वर्षा के रुकने से पहले ही रंगाराव मद्रास पहुंच गए। जो सुविधाएं मद्रास में थीं, वे सुवर्णापेट में कहां। साहब लोग, मेम, सिनेमा, चाय पार्टियां, गवर्नर, बड़े बड़े अफसर, टार की सड़कें, समुद्र तट की सैर, ठंडी हवाएं, कितना आकर्षक है मद्रास भी। उसने रंगाराव का मन हर लिया। सुवर्णापेट जैसे गांव में क्या धरा था। मद्रास पहुंचते ही रंगाराव ने अपने राजतिलक के उपलक्ष्य में राजधानी के प्रतिष्ठित सज्जनों को एक बड़ी दावत दी। दावत के दूसरे ही दिन उसने डांजिन्स होटल और स्पेंसर कंपनी को कुल मिलाकर 50,000 रुपये के बिल अदा किए। इसके अतिरिक्त गवर्नर बहादुर और उनकी पत्नी को 1-1 लाख रुपये के रत्नहार भेंट किए। अंत में हिसाब देखा गया तो राजतिलक पर 6 लाख और मद्रास का खर्च 3 लाख, कुल 9 लाख रुपये खर्च हुए। मालगुजारी का बकाया 1 लाख वसूल हो चुका था। 8 लाख खजाने से खर्च हुए। हरप्पा नायडू की मृत्यु के समय जमींदार के खजाने में 10 लाख रुपये रह गए थे। कृष्णम नायडू ने 10 के 20 लाख किए। उन्होंने दिल खोल कर खर्च भी किया। जमींदार का माल नाना प्रकार के लोग खा गए, फिर भी किसी को पता न लगा कितना धन कैसे जमा हो गया। कृष्णम नायडू को छोड़े हुए 20 लाख में से रंगाराव ने पहली ही खेप में 8 लाख खर्च कर डाले। उन्हें जमींदारी संभाले अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। सच्ची बात राम जाने, परंतु यह अफवाह फैल गई कि राजतिलक की गड़बड़ में दीवान जी और अन्य तीनों कर्ता धर्ताओं ने 50,000 रुपये ऐंठे हैं। फिजूल खर्ची बेहद हुई। सारा सामान जहाँ का तहाँ गायब हो गया। पंडालों के खंभे भी काफूर हो गए। जब वर्षा रुकी तो दीवान जी भी मद्रास पहुँच गए। राधा कृष्णैया और सरवा रायडू अपने अपने गाँव चले गए। कोठी में अकेला रामेश्वरम रह गया। वह भी अपने निजी कामों में व्यस्त हो गया। अतएव बचे खुचे सामान की खबर लेने वाला भी कोई न रहा। अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए रामेश्वरम का मन बेताब हो रहा था। उसके 2 शत्रु थे, रत्नगिरि और धर्माराव। उन्हें नीचा दिखाने के लिए रामेश्वरम ने प्रयत्न शुरू कर दिया। उस वेश्या का क्या, वह तो आखिर स्त्री है, बदला तो उस धर्माराव से चुकाना होगा। रामेश्वरम ने धर्माराव को कोठी में बुलाकर पिटवाना चाहा। एक नौकर को धर्माराव के पास भेजा। धर्माराव बोला, वह कौन होता है मुझे बुलाने वाला, जाकर कहो मैं नहीं आऊँगा। यह उत्तर सुनकर रामेश्वरम के अंतर में क्रोध की एक लहर उठ गई और छाती में आघात करती हुई मुख पर झलक आई तथा भौहों के मध्य भाग में उसका रक्त काला पड़ गया। धर्माराव के पूर्वजों का वृतांत उनकी मान मर्यादा रामेश्वरम भली भांति जानता था। यदि वह स्वयं धर्माराव के घर जाकर ज्यादती करता तो अवश्य गड़बड़ मच जाती। गांव वाले धर्माराव का ही पक्ष लेते। अतएव रामेश्वरम क्रोध के कारण आपे से बाहर हो गया और धर्माराव के विषय में कई झूठी बातें लिखकर रंगाराव को एक पत्र भेजा। इतना कुछ करने के बाद ही उसका क्रोध कुछ शांत हो सका। रामेश्वरम ने एक नौकर को बुलाकर कहा कि किसी न किसी तरह रत्नगिरि का अपमान करना चाहिए। नौकर ने हाँ कर दी। उसी शाम को यह खबर रत्नगिरि के पास पहुंची। उस गांव में कोठी के दासी पुत्रों और वेश्याओं में बड़ा एका था। रत्नगिरि का एक भाई था, उसका नाम था कबीर। वह बड़ा बलशाली था, शरारती भी बला का था। गाड़ी पर 2 खंडी वजन लादकर अपनी भुजाओं से अनायास उठा सकता था। तलवार और लाठी फेरने में अद्वितीय था। आयु कोई 40 वर्ष की थी। रंगाराव के बचपन में उसने यह विद्या कृष्णम नायडू से सीखी थी और रंगाराव को भी कुछ कुछ सिखाई थी, पर रंगाराव के पल्ले वह नहीं पड़ी। सिखाते समय कबीर ने रंगाराव को पीटा भी था। रंगाराव ने पिता के पास कबीर की शिकायत की। कृष्णम नायडू पुराने विचार के थे। उनका विश्वास था कि चाहे युवराज ही क्यों न हो, उसे पीट कर ही ठीक किया जा सकता है। अतएव वे बोले, हाँ हाँ, मार खाकर भी सीख लेना होगा। तलवार हाथ में नहीं पकड़ सको तो तुम कैसे जमींदार बनोगे। उस समय से रंगाराव का कबीर पर बेहद गुस्सा था। कोठी के नौकरों को कबीर से बड़ा स्नेह था, वे सब उसे बहुत मानते थे। अतएव जब कबीर की बहन रत्नगिरि का अपमान करने की बात रामेश्वरम ने उस नौकर से चलाई तो वह भला कैसे चुप रहता। उसने झटपट रत्नगिरि से जाकर कह डाला। कृष्णम नायडू की पत्नी का नाम रुक्मिणी राव था। वे 60 बरस की वृद्धा थीं। उसी शाम को रत्नगिरि रुक्मिणी राव के पास गई और राजतिलक के समय का सारा वृत्तांत सुनाया। उसने यह भी कहा कि रामेश्वरम किसी न किसी तरह उसकी हानि कराना चाहता है। बड़ी रानी ने यह वृत्तांत कुछ राजतिलक के दिन ही सुना था। अब सारा हाल जानकर उन्होंने उस नौकर को बुलाया और पूछा, रामेश्वरम ने सचमुच यह बात कही थी। नौकर बोला, जी हाँ माँ जी, उन्होंने मुझ ही से कहा था। फिर रत्नगिरी को विदा करके बड़ी रानी ने रामेश्वरम को बुलाया और खूब फटकारा। अंत में बोली, मेरी बहन के पेट से तुझ जैसे धूर्त ने कैसे जन्म लिया। रामेश्वरम ने तत्काल सिर लटका लिया, पर मन ही मन नौकर पर ही क्रोध आ रहा था। अपना सारा क्रोध उसने अपने भीतर छिपा लिया और प्रकट में यथापूर्व व्यवहार करने लगा। कृष्णम नायडू के देहांत के बाद से बड़ी रानी अपने कमरे में ही रहने लगी थी। वे कभी बाहर न आती। बुढ़ापे में प्राप्त वैधव्य का उन्हें बड़ा दुख था। अपनी दासियों से कहती, मैं क्यों नहीं चली गई स्वामी से पहले। सुहागन की मौत मरने के लिए जाने कितना पुण्य करना पड़ता है। एकादशी और द्वादशी के दिन वे वेणुगोपाल स्वामी के दर्शन को जाया करती थी। उन दिनों केवल एक बार भोजन करती और कई कड़े नियमों का पालन करती। लेकिन कृष्णम नायडू की मृत्यु के बाद 6 महीने में वे वेणुगोपाल स्वामी के दर्शन को भी नहीं गईं। जिस दिन उन्होंने रामेश्वरम को फटकारा वह श्रावण शुक्ला दशमी का दिन था। उस रात को बड़ी रानी के स्वप्न में वेणुगोपाल स्वामी दिखाई दिए। स्वामी के सिर पर ग्वालों की पगड़ी थी, गले में तुलसी की माला, सूर्यहार और चंद्रहार थे, भुजाओं में बाहुपुर थे, नाभि के पास चिंतामणि विद्यमान थी, पीताम्बर का काछा पांव तक लटक रहा था, जरी की कोर वाला रत्नों का लाल कश्मीरी दुशाला स्वामी ने कंधों पर ओढ़ रखा था, हाथों में कंकण और उंगलियों में वज्र आदि जड़ी अंगूठियां थी, हृष्ट पुष्ट बाजुओं में बाजूबंद और दक्षिण चरण में स्वर्ण का बना कड़ा था, दाएं हाथ की उंगलियों के बीच मरकतमयी बांसुरी थी, होठों पर मंद हास था और आंखों में भक्तवत्सलता व्यक्त करने वाली प्रसन्नता। ललाट पर तिलक लगाकर बाला जोवन वाले कृष्णम नायडू के रूप में बड़ी रानी को वेणुगोपाल स्वामी का साक्षात्कार हुआ। महान योगियों को भी स्वामी का संपूर्ण साक्षात्कार नहीं हुआ करता। किसी एक अंग पर बुद्धि टिक नहीं पाती, क्षण भर टिक भी गई तो तुरंत विचलित हो जाती है। बड़ी रानी के पूर्व पुण्य के क्या कहने, वे अपनी इंद्रियों का कितना संयमन करती होंगी, कैसी होगी उनकी तपस्या की महिमा। शुक योगी को भी जिनके ठीक ठीक दर्शन नहीं हो पाए थे, ऐसे स्वामी ने बड़ी रानी को अपनी अत्यंत मनोहर आकृति में दर्शन दिए। कृष्णम नायडू के रूप में आकर उन्होंने यह दिखा दिया कि बड़ी रानी का पातिव्रत भगवान में प्रतिबिंबित हुआ है। स्वामी ने अपने होठ हिलाकर कुछ कहा, वह बड़ी रानी को सुनाई न दिया, परंतु होठों की हलचल से उन्होंने अनुमान लगाया कि स्वामी ने कहा कल एकादशी है। रानी का हृदय एक बारगी पश्चाताप, आनंद और दुख से विह्वल हो उठा। इतने में नींद खुल गई, भोर हो गई, प्रातःकाल सूचक वाद्य बजने लगे थे। बड़ी रानी को ऐसा लगा कि उनका मन शहनाई के मधुर नाद के साथ साथ प्रातःकालीन मंदानील तरंगों पर झूलता हुआ आनंद विभोर हो उठा है। हे राम, हे कृष्ण, हे समुतिष्ठ, हे राम, हे कृष्ण, हे जगत त्रय गुरु, हे पुंडरीकाक्षरक्ष निजपक्षम, हे राम। कृष्ण लीला तरंग की ये पंक्तियां शहनाई पर बज रही थीं। वह सावेरी राग सा लग रहा था, मानो अनुकूल वायु में निश्चल तथा नीरो नदी तरंगों पर फिसलती चलने वाली छोटी सी नाव हो। बड़ी रानी को सावेरी, मलयमारुत तथा चक्रवाक ये राग बहुत पसंद थे। वे सोच रही थीं, भगवान ने तो सदा जागृत हैं, उन्हें जगाने की आवश्यकता है। रानी ने उठकर शिर स्नान किया और एकादशी का उपवास रखा। उस दिन भागवत सुनने की इच्छा उन्हें हुई। वे धर्माराव को जानती थीं, सो उसे बुला भेजा। धर्माराव की समझ में नहीं आया कि उसे जाना चाहिए या नहीं। कोठी के सब लोग उसके विरोधी लगते थे, लेकिन वास्तव में एक रामेश्वरम को छोड़कर उसका कोई विरोधी नहीं था। लगा कि शायद रामेश्वरम ही कोई अत्याचार न कर बैठे। फिर उसने सोचा क्या कर लेगा। वह कोठी की ओर चल पड़ा। रास्ते में कबीर से उसकी भेंट हुई। कबीर उससे कभी न बोलता था। धर्माराव को देखते ही वह सिर झुकाकर चला जाता। आज उसने अचानक पूछा, बाबूजी कहाँ जा रहे हो। धर्माराव ने साश्चर्य जवाब दिया, कोठी पर। कबीर ने पूछा, कोठी पर, सचमुच कोठी पर, तो चलिए बाबूजी, मैं भी आपके संग चलूँगा। दोनों कोठी के पास जा पहुँचे। बड़ी रानी के निमंत्रण की किसी को खबर न थी, अतएव वहाँ के लोग धर्माराव को कुछ विचित्र दृष्टि से देखने लगे। अंतःपुर में रामेश्वरम से भेंट हुई, पर वह कबीर को देखकर चुप हो गया। धर्माराव ने बड़ी रानी के पास अपने आगमन की खबर भेजी। रानी ने उसे भीतर बुला लिया। कबीर वहीं रह गया, धर्माराव भीतर चला गया। कोठी के कट्टर शत्रु धर्माराव को बड़ी रानी ने निमंत्रण भेजा था। यह देखकर रामेश्वरम का दिल बेहद जलने लगा। उस जलन के मारे बेताब होकर उसने झूठी शिकायतों से भरा एक और पत्र मद्रास भेज दिया। धर्माराव का आदर सत्कार करके बड़ी रानी बोली, बाबू आज एकादशी है, तुम महाभारत और भागवत का बहुत अच्छा पाठ करते हो, तुमसे कुछ सुनना चाहती थी, सो बुलाया है। पाद टिप्पणी में है, तेलुगु के महान भक्त कवि जिन्होंने आंध्र भागवत की अत्यंत सुंदर तथा सरस रचना की है। भागवत की पुस्तक वहां तैयार रखी थी। धर्माराव ने मंगलाचरण से प्रारंभ किया। तुरंत उसने कृष्णम नायडू और गोपन्ना का स्मरण हुआया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। रानी ने पूछा, क्यों बेटा आंसू क्यों बहा रहे हो? धर्माराव ने कहा, कुछ नहीं, और अपना पाठ शुरू कर दिया। पुस्तक के खोलते ही रुक्मिणी कल्याण का प्रसंग आ गया। रानी बचपन में रुक्मिणी कल्याण पढ़ चुकी थी। सारे पद्य उन्हें याद थे। वे कहने लगी, बेटा सच कहा पोतन्ना ने, सचमुच विष्णु कथाएं नित्य नूतन प्रतीत होती हैं। मैं 60 वर्ष से सुन रही हूँ, फिर भी ये पद्य आज भी नए लग रहे हैं। पोतन्ना ही वह तेलुगु महान भक्त कवि है। पढ़ते पढ़ते धर्माराव का कंठ गदगद हो उठा, आंखें भर आईं। भागवत पाठ के बाद थोड़ी देर तक भगवान का स्मरण करके रानी ने पूछा, बेटा तुमने पढ़ाई छोड़ दी? धर्माराव ने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी ताड़ गईं। उस दिन शाम को शीशे की गाड़ी में सवार होकर वे मंदिर गईं। मंदिर के भीतर से सारे पुरुष बाहर चले गए। पुजारियों ने मंदिर के पीछे खड़े एक पुरुष को नहीं देखा। वह पुरुष वहीं रह गया। रानी परिक्रमा कर रही थी। उनके पीछे पीछे दो दासियां चल रही थीं। दासियों के पायल बज रहे थे। कृष्णम नायडू की मृत्यु के बाद बड़ी रानी के चरणों का अनुपुर सौभाग्य अन्य सौभाग्यों के साथ लुप्त हो चुका था। रानी ने मंदिर की तलैया की सीढ़ियों पर एक पुरुष और एक स्त्री को देखा। वह पुरुष धर्माराव था। उसे पहचान कर रानी के मन में शंका हुई। दासियों को वहीं छोड़कर वे अकेली तलैया के पास गईं और एक चंपक वृक्ष की ओट में खड़ी हो गईं। धर्माराव के पास जो लड़की थी उसे वे नहीं पहचानती थीं। पुरुष, भक्ति अलग है और ज्ञान अलग। ज्ञान सबके लिए सुगम नहीं, भक्ति का मार्ग ही सुगम है। स्त्री, शिव जी सेवनीय हैं या विष्णु? ये बातें सुनकर बड़ी रानी का मन कुछ आश्वस्त हुआ। धर्माराव के बारे में अभी अभी उनकी जो धारणा बन गई थी वह कुछ बदली। फिर भी मूल रहस्य का उन्हें पता न चल सका। वह लड़की कौन थी भला? पुरुष, लीला शुक ने गाया है, संसारेन किम संसारम, कंसारेश्चरण कमल परिभजनम, ज्योतिः किमंधकारे यदंधकारेन कारेरनुस्मरणम्। भक्ति योगियों के लिए कृष्ण सुलभ हैं, ज्ञान योगियों के लिए शिव सेवनीय हैं। स्त्री, केवल सेवनीय क्यों कहते हो, सुलभ नहीं है क्या? पुरुष, भाई ज्ञान योग स्वयं सुलभ नहीं है। रानी को उस लड़की के विवेक पर अचंभा हुआ। धर्माराव ने उसे भाई कहकर पुकारा था। उस दोनों का रिश्ता इससे स्पष्ट नहीं होता था। धर्माराव की कोई छोटी बहन न थी। उसके पिता के दूसरे विवाहों से भी उस आयु की कोई लड़की न थी। फिर यह लड़की कौन है? क्या रत्नगिरि की बेटी है? पर वह तो वारंगना है। वेश्या के प्रति रानी के मन में जो धारणा थी उसका उन दोनों के परस्पर संबंध से कोई सामंजस्य नहीं बैठता था। स्त्री, पहले यह तो बताओ कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है? पुरुष, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंतर्गत ब्रह्मा नहीं। ब्रह्म उन त्रिमूर्तियों में से भी अतीत एक शक्ति है। वह निर्गुण सच्चिदानंद स्वरूप है, उसे तुम नहीं जानती। उसके बारे में फिर बताऊंगा। इंद्रियां और उनके गुण सारे के सारे झूठे हैं। यदि उनके झूठे होने का ज्ञान अनेक जन्मों के परिपाक से किसी व्यक्ति में सहज उत्पन्न हो जाए तो वह व्यक्ति ज्ञानी बनकर संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मुझे भी कुछ और पढ़कर इस बात का पता लगाना है। भक्ति का अर्थ पोतन्ना ने बड़ा अच्छा बताया है। उन्होंने कहा है कि तन, हृदय और वाणी का सख्य ही भक्ति है। क्या वह पद्य तुम्हें याद है? जरा पढ़ो तो। देवदासी ने वह पद्य पढ़कर सुनाया। धर्माराव ने कहा, अच्छा पद्य का तात्पर्य बताओ। देवदासी ने बताया, धर्माराव प्रहलाद की भक्ति को तुम जानती हो न? वह भक्ति पुरुषों की योग्य है, स्त्रियों के लिए गोपियों की भक्ति आचरणीय है। देवदासी ने तलैया के स्वच्छ पानी में देखा। अभी अभी सूर्यास्त हुआ था। पास वाला कदम वृक्ष पानी में प्रतिबिंबित हुआ। देवदासी, भैया कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुरा कर इसी पेड़ पर जा चढ़े थे, कहीं मेरी साड़ी भी चुरा कर न ले जाएं। मैंने ग्वाल कुल में जन्म थोड़े ही लिया है। धर्माराव, गोपियों का अर्थ केवल ग्वालिने नहीं, भगवान में अनुरक्त स्त्री मूर्तियां हैं। तुम भी गोपी हो, कृष्ण की लीलाएं सुनकर तल्लीन हो जाना ही गोपी स्वभाव है। बड़ी रानी फूली नहीं समा रही थी। लड़की की आयु 12-13 वर्ष से अधिक नहीं होगी, रत्न जैसी लग रही थी। रानी धीरे धीरे उनके पास गई। उनकी आवाज सुनकर धर्माराव ने मुड़कर देखा। रानी को देखकर वह खड़ा हो गया। देवदासी कुछ सोच रही थी, फिर धर्माराव की देखा देखी वह भी खड़ी हो गई। धर्माराव देवदासी से, आप कोठी की बड़ी रानी जी हैं। रानी, यह लड़की कौन है? धर्माराव चुप रहा। देवदासी, रत्नगिरि मेरी माँ है। रानी, तुम दोनों कुछ बातें कर रहे थे। दोनों झेप गए। वह थी बाल हृदय की झेप। रानी, तुम दोनों कुछ चर्चा कर रहे थे, करते रहो, मैं दर्शन करने जाती हूँ। उन दोनों ने कहा, हम भी दर्शन करने जाएंगे। दोनों रानी के साथ हो लिए। रानी के पीछे देवदासी चली। धर्माराव उनसे कुछ दूर चल रहा था। न जाने क्यों देवदासी बड़ी रानी से घबराई नहीं, प्रत्युत उसके हाव भाव से कुछ अपनापन झलकने लगा। पहले धर्माराव, फिर दोनों देवियां मंदिर के भीतर जा पहुंची। धर्माराव देव दर्शन के समय प्रार्थना श्लोक पढ़ा करता था। उस दिन रानी के रहने के कारण उसने श्लोक नहीं पढ़े। धर्माराव को देखकर पुजारी घबरा गया। उसने सारे पुरुषों को मंदिर से बाहर भेज दिया था, फिर यह पुरुष कहाँ से आधम का। परंतु इस पुरुष के अस्तित्व का रानी को भान ही न था, अतएव पुजारी कुछ संभल गया। सब ने विष्णु चरण स्वीकार किए। बाद टिप्पणी में, दक्षिण में विष्णु मंदिरों में सोने चांदी के बने विष्णु चरण प्रसाद के रूप में भक्तों के सिर पर टिकाए जाते हैं। पुजारी के दिए हुए मंदार पुष्प ग्रहण किए। रानी लौटने लगी, पर देवदासी वहीं खड़ी रही। रानी ने पूछा, क्यों आती क्यों नहीं। देवदासी, रुक्मणी की अपेक्षा सत्यभामा पर ही कृष्ण भगवान का अधिक प्रेम है। स्वामी ने सत्यभामा को ही अपने पास रखा है। रानी के प्राण छटपटा गए। धर्माराव, सत्यभामा की अपेक्षा गोपियों पर ही स्वामी का अधिक प्रेम था। देवदासी, हाँ हाँ, इसीलिए तो भ्रमर गीतों का आविर्भाव हुआ। रानी का मन श्लोक में न था। तीनों मंदिर के बाहर आए। प्रसाद लेकर थोड़ी देर विश्राम करने के उपरांत रानी अपनी दासियों समेत लौटने लगी। धर्माराव ने उनसे विदा ली। देवदासी ने भोली भाली दृष्टि से रानी को देखा। रानी ने मंदहास किया। भाई बहन दोनों घर लौटे। गिरिका को उसके घर छोड़ धर्माराव अपने घर की ओर चल पड़ा। गिरिका उसे अपने घर के भीतर बुलाती, पर वह कभी न जाता। आज उसके घर लौटते ही माँ ने इमली की चटनी से खाना खिलाया। अभी तक कई लोगों का कर्ज चढ़ा हुआ था, आज किसी ने उधार नहीं दिया। धर्माराव ने ज्यों त्यों दो कौर खाए और छाछ मांगा। माँ ने थोड़ा और अन्न खाने को कहा, पर घी के बिना धर्माराव से खाया न गया। माँ ने छाछ परोसा, धर्माराव खाने लगा। माँ, बेटा आज रंगापुर से एक आदमी संदेशा लेकर आया था। लड़की को सयानी होकर एक वर्ष बीत चुकी है चुका है। उन्होंने गर्भाधान का मुहूर्त तय करने को कहा है। पाद टिप्पणी में, गर्भाधान पति पत्नी का प्रथम समागम संस्कार है। धर्माराव ने सिर झुकाकर कहा, खूब कहा है। शायद इसी को कहते हैं भुखमरी में दावत को के सपने देखना। माँ, नहीं रे, क्या भुखमरी के कारण गृहस्थी छोड़ देंगे। उधार में उधार, कुछ न कुछ करना ही होगा। सयानी लड़की को मायके में रखने से बदनामी न होगी। धर्माराव चुपचाप भोजन करके उठा और सामने के कमरे में खाट लगाकर सो रहा। धर्माराव के माता मह का नाम सोमन्ना था। वे घबरा रहे थे कि उनके बेटे गंगाधर का ब्याह नहीं होगा। रामेश्वर शास्त्री ने देश भर छान मारा और अंत में पालनाडु प्रांत से एक नाता खोजकर गंगाधर का ब्याह करवाया। पालनाडु आंध्र के गुंटूर जिले का एक भाग, जहां मध्ययुगीन वीररस की रोचक गाथाएं प्रचलित हैं। ब्याह के बाद कई वर्ष तक संतान न हुई। इसका दुख बेटे से अधिक बाप को ही हुआ। गंगाधर की पत्नी का नाम नागम्मा था। वह बड़ी गंवार थी, ऊंचे कद की भरी पूरी और काली कलूठी। उसमें सभ्यता की गंध तक न थी। तिल का एक दाना भी वह घर से बाहर जाने न देती थी। सयानी होने के 10 वर्ष बाद उनके एक लड़की हुई। लड़का न होने का सोमन्ना को बड़ा दुख हुआ। लड़की 3 वर्ष की हुई तो फिर एक और लड़की ने जन्म लिया। इस बार भी लड़का न होने के कारण दुखावेश में सोमन्ना आंगन में बैठकर नवजात शिशु को दुनिया भर की गालियां देने लगे। सोमन्ना बहुत बूढ़े हो चले थे। बड़ी लड़की की आयु 5 वर्ष की होते ही उसका ब्याह धर्माराव से करवाने के लिए सोमन्ना ने रामेश्वर शास्त्री से अनुरोध शुरू किया। वे बोले, बूढ़ा हो चला हूँ, मेरे भाग में पौत्रों को देखना नहीं बता था, न सही, कम से कम इस लड़की के हाथ पीले हो जाए तब मरना चाहता हूँ। फिर कभी उलाहना देकर कहते, तुम शायद अपने लड़के का नाता किसी लक्षाधीश परिवार से जोड़ना चाहते हो, पर याद रखो, लक्षाधीश का नाता पुराने आनुवंशिक नाते की बराबरी नहीं कर सकता। और कभी करुण स्वर में अनुनय विनय करते, मुझ बूढ़े पर भी तुम्हें दया नहीं आती। मैंने तो तुम्हारे और गंगाधर के बीच कभी कोई अंतर नहीं माना, फिर तुम्हारी इच्छा। बाद में रामेश्वर शास्त्री पर उनकी पत्नी सावित्री देवी का भी दबाव बढ़ने लगा। फलतः शास्त्री जी को हाँ कहनी पड़ी और 11 वर्ष की आयु में धर्माराव का ब्याह 5 वर्ष की अरुंधति से हो गया। विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। स्वयं कृष्णम नायडू रंगापुर जाकर वर वधू को 1,000 रुपये की भेंट चढ़ा आए थे। रामेश्वर शास्त्री ने शादी में 5-6 हज़ार रुपये खर्च किए। ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा मिली। जिन ब्राह्मणों ने वेद का अध्ययन पूरा किया था उन्हें प्रति व्यक्ति 1 अशर्फी दी गई। कम से कम दक्षिणा 1 रुपये की थी। लग्न वेदी पर अरुंधति बैठ न सकी। एक दुबली पतली लड़की थी, देखने में 3 बरस की लगती थी। जहाँ बिठा दी जाती वहीं बिच्छू की तरह चिपक जाती। मधुपर्क के बोझ से विवश होकर वह रो पड़ी। पाद टिप्पणी में मधुपर्क वे हल्दी लगे वस्त्र जो वर वधु को विवाह के समय पहनाए जाते हैं। कई बार वधु के बिना ही होम आदि किए गए। एक दिन संध्या को होम के समय वह धर्माराव से कहने लगी, ए जी मुझे नींद आ रही है। धर्माराव ने उसे अपनी जांघ पर लिटा लिया, वह वहीं सो गई। धर्माराव भी नींद के मारे जम्हाइयाँ ले रहा था। इतने में बड़ी बूढ़ियाँ अरुंधति को धर्माराव की जांघ पर सोता देखकर बड़ी प्रसन्न हुईं। सोमन्ना को लगा कि उसे मोक्ष मिल गया है। ब्याह के 2-3 बरस के भीतर ही रामेश्वर शास्त्री को बुरे दिन देखने पड़े। इधर नागम्मा ने फटकारना शुरू किया कि लड़के वालों ने रस्म रिवाज के अनुसार लड़की को कपड़ा लत्ता आदि नहीं भेजा। उसके उलाहनों से सावित्री देवी के नाकों दम था। वह बहुत उकता गई थी, लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हुई और नागम्मा के साथ गंगाधर भी निष्ठुर व्यवहार करने लगे। जब अरुंधति सयानी हुई तो एक और शिकायत यह पैदा हुई कि रामेश्वर शास्त्री ने लड़की के लिए अच्छी साड़ी नहीं भेजी। सारांश यह कि धर्माराव और उसके ससुर में पटती न थी। समधियों में इतना मनमुटाव था कि दोनों के बीच हरी धूप भी रखी जाती तो फौरन जल उठती। धर्माराव इतनी मुसीबतें झेल रहा था, परंतु ससुर ने उसकी तनिक भी सहायता नहीं की। एक बोरा चावल तक नहीं भेजा। अब गर्भाधान संस्कार के लिए सामग्री कहाँ से आएगी? धर्माराव जानता था कि ससुर जी फूटी कौड़ी न देंगे। धर्माराव ने लेटे लेटे घर की ओर देखा। हवेली जैसा बड़ा घर था। उसने सोचा, मेरी पत्नी आएगी तो इतने बड़े घर में माँ को अकेलापन महसूस न होगा। अरुंधति को उसने 4 बरस पहले देखा था। रामेश्वर शास्त्री की मृत्यु के समय वे सब यहाँ आए थे। तब अरुंधति 10 बरस की थी। चरखे की तरह इधर उधर घूम रही थी। पति तो अपनी ही परेशानियों से घिरा हुआ था। उसने अरुंधति को ठीक ठीक देखा तक नहीं। उस समय वह भी लड़का था। फिर 4 बरस तक उसने अरुंधति को नहीं देखा। पता नहीं अब वह कैसी होगी। उसके दुबले पतले और गोरे मुख पर नाचने वाली सुंदरता न जाने अब कैसी दिखती होगी। दूसरे ही क्षण धर्माराव कल्पना के सोपान बांधने लगा। अरुंधति, उसकी अरुंधति, लावण्य की राशि, पातिव्रत्य की मूर्ति, स्मृतियों की मंजूषा उसके सम्मुख खड़ी है। उसे अपने बाहुपाश में उसने बांध लिया। उसके आते ही सारा घर मानो लक्ष्मी के प्रकाश से जगमगा उठा है। परंतु दूसरे ही क्षण वह वास्तविक जगत में लौट कर सोचने लगा, गर्भाधान के लिए पैसा कहाँ से आएगा। उसे कुछ नहीं सूझता था। अंत में सोचते सोचते एक उपाय सूझा। वह उपाय पहले भी सूझा था, पर धर्माराव ने उसे मन में टिकने नहीं दिया था। उपाय यह था कि मकान को रेहन रख दिया जाए, परंतु यह काम कृष्णम नायडू की कृपा को ठुकराने का सदृश होगा। इस विचार से ही उसे बड़ी पीड़ा हुई। फिर वह सोचने लगा, क्या पता कि पत्नी के आगमन से मेरे भाग्य खुल जाए। कहावत यह है कि पशु और बहू के आगमन की बेला की बड़ी महिमा होती है। घर को रेहन रखने से 100 रुपये मिल जाए तो धीरे धीरे लौटाए जा सकते हैं। इसी प्रकार संकल्प और विकल्प के बीच झूलते हुए उसने अंत में घर रेहन रखने का निश्चय कर लिया। मन में मनोज की खलबली प्रारंभ हुई। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी कल्पना में अरुंधति के 1,000 आलिंगनों का सुख लूट लिया। फिर भोर होने से कुछ ही देर पहले उसकी आँख लगी। दूसरे दिन वह देर से जागा, परंतु दिन निकलते ही उसका संकल्प भी बदल गया। अब उसे घर रेहन रखने की इच्छा नहीं हो रही थी। महाराज कृष्णम नायडू की पवित्र आत्मा अब भी मेरा अनुसरण कर रही है। उनकी उदार पत्नी ने मुझ पर अपार प्रेम की वर्षा की है। अतएव क्या उनके प्रति गद्दारी करना उचित होगा? इसके 2-3 दिन बाद वह एक पंडित के पास जाकर गर्भाधान का मुहूर्त तय करा आया। मुहूर्त श्रावण शुक्ला दशमी को तय किया गया। केवल 10 दिन की अवधि रह गई थी। धर्माराव ने घर जाकर माँ को यह बात सुनाई और आप ही आप कहने लगा, माँ अभी क्या जल्दी है, आप इसे माघ मास तक रोका नहीं जा सकता। सावित्री देवी हंस पड़ी और चुप हो गई। उसी संध्या को उन्होंने रंगापुर खबर भेजी और दूसरे दिन धर्माराव से कहा कि रंगापुर वालों को खबर पहुंचा दी गई है। धर्माराव ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मैंने तो मना किया था ना माँ। माँ बोली, कब मना किया था तुमने? धर्माराव सोचने लगा, अब मैं फिर से माघ मास तक रुकने का आदेश भेजूंगा तो ससुर आग बबूला हो उठेंगे। यह सोचकर वह चुप हो गया। शाम को नागन्ना शेट्टी के घर गया। शेट्टी का बेटा वेंकट रत्नम लेन देन के व्यवहार स्वयं संभाल रहा था। सुवर्णापेठ अब न गाँव था और न शहर, वहाँ का सारा व्यापार वेंकट रत्नम के हाथ में केंद्रित था। जब धर्माराव वहाँ पहुँचा तो बाप बेटे बाहर दुकान पर थे। उसे देखकर दोनों में से एक भी न बोला। जब कृष्णम नायडू जीवित थे नागन्ना शेट्टी धर्माराव को झुक झुक कर प्रणाम किया करता था, परंतु जब राजाश्रय जाता रहा तो धर्माराव के प्रति शेट्टी का सारा आदर लुप्त हो गया। शेट्टी का सूखा बर्ताव देखकर भी अपने काम से आया हुआ धर्माराव वहाँ जा बैठा और बोला, शेट्टी जी कुछ काम लेकर आया हूँ। शेट्टी ने इधर उधर के कामों में बड़ी व्यस्तता का अभिनय किया और थोड़ी देर बाद पूछा, क्या काम है? धर्माराव बोला, 100 रुपये की जरूरत पड़ी है, उधार मिलेंगे? शेट्टी, आपको उधार देकर ही हमारा सत्यानाश हुआ है। जितना दिया था उसके आधे का आधा वसूल हुआ। जरा बताओ तो तुम्हारी कौन सी जायदाद देकर कर्ज दूँ? धर्माराव, 5,000 कीमत वाला मकान जो है शेट्टी जी। शेट्टी के मुंह में पानी भर आया। सचमुच मकान का मूल्य 10,000 रुपये से कम न था। केवल कृष्णम नायडू के दबाव के कारण उसे 5,000 में चुकाया गया। शेट्टी को ऐसा लगा कि वह मकान फिर उसकी ओर देख रहा है, पर उसने ये सब विचार मन में छिपाते हुए कहा, अब तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, 100 रुपये के लिए मकान रेहन रखोगे? ये साहूकार हथकंडे देकर धर्माराव झुंझला उठा। उसकी जवान तक बात आई, मैंने कब कहा रेहन रखूँगा? पर उसने इस बात को मन में दबाया, सोचने लगा, इस समय टेढ़ी बात करने से सारा मामला ही किरकिरा हो जाएगा। फिर वह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद शेट्टी ने कहा, कल सवेरे आइए। मकान के रेहन की बात चलते ही शेट्टी के शब्दों में तुम के बदले आइए का प्रयोग होने लगा। यह परिवर्तन धर्माराव ने लक्ष्य किया। फिर एक बार कल की बात पक्की करके वह घर लौटा, पर दूसरे दिन सवेरे शेट्टी के घर पहुंचा तो शेट्टी वहां न था। उसका बेटा वेंकट रत्न बोला, पिताजी कहीं गए हुए हैं, फिलहाल पैसे नहीं मिलेंगे। धर्माराव यही बातें बाप की जवानी सुनना चाहता था। वह कुछ देर शेट्टी की प्रतीक्षा करता रहा, पर उसके न लौटने के कारण अंत में उठकर चला आया। संध्या समय रंगाजम्मा सावित्री देवी को देखने गई। पहले सावित्री देवी रंगाजम्मा से घृणा करती थी, कहती थी, वह मायके से यूं ही चली आई है, उल्टा है। जब कभी वे ऐसा कहती तब रामेश्वर शास्त्री उन्हें बहुत फटकारते। उसके बाद शास्त्री जी पर मुसीबतें टूट पड़ीं और दुर्दिन में रंगाजम्मा ही यथासंभव उनके परिवार के काम आई। तब से उसके प्रति सावित्री देवी का तिरस्कार जाता रहा। आजकल जब कभी दोनों मिलती बड़े स्नेह से बातें करती। सावित्री देवी अब घर की बड़ी बहू कहकर रंगाजम्मा का उल्लेख करने लगी थी। आज उन्होंने रंगाजम्मा को अरुंधति के गर्भाधान और धन के अभाव आदि का ब्यौरा सुनाया। रंगाजम्मा सुनती रही। थोड़ी देर बाद वह विदा हुई और सीधे शेट्टी के घर जा पहुंची। शेट्टी ने पूछा, माई जी इतनी देर से आज क्यों आई हो? रंगाजम्मा के प्रति गांव वालों का बड़ा आदर था। इसके अतिरिक्त वह 10 एकड़ जमीन की मालकिन भी थी। उसने शेट्टी से पूछा, धर्माराव तुम्हारे पास रुपये उधार लेने आया था? शेट्टी, जी हाँ। रंगाजम्मा, कितने रुपये मांग रहा था? शेट्टी, 100 रुपये। रंगाजम्मा, नई फसल के आते हैं रुपये मैं लौटा दूंगी, तुम चाहो तो नोट लिख दूंगी, कल सवेरे धर्माराव को पैसे दे देना। शेट्टी बोला, जी हाँ जी हाँ। रंगाजम्मा चली गई। दूसरे दिन धर्माराव शेट्टी के घर जा पहुंचा। बाप बेटा दोनों उसकी बड़ी अवभगत करने लगे। इस परिवर्तन का कारण धर्माराव की समझ में न आया। वह इतना ही सोच रहा था कि उसके मकान पर शेट्टी जी का मन ललचा गया है। शेट्टी अपने बेटे से कहने लगे, क्यों रे, पहले शास्त्री जी का काम क्यों नहीं निपटा देता? नोट पहले ही लिखा जा चुका था, एक आने का टिकट भी चिपका हुआ था। शेट्टी ने धर्माराव से हस्ताक्षर करने को कहा। धर्माराव ने हस्ताक्षर किए और टिकट का एक आना काट कर वेंकट रत्न ने 99 रुपये 15 आने धर्माराव को दे दिए। धर्माराव बोला, रेहन के बदले कोई चिट्ठी पत्र लिखवा लो। शेट्टी कहने लगा, जी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप रामेश्वर शास्त्री के पुत्र हैं, क्या अपनी बात पर मुकर जाएंगे? शेट्टी के एक एक शब्द पर धर्माराव के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने सोचा, हो न हो शेट्टी ने यह कोई ज़बरदस्त योजना बनाई है, पर वह योजना क्या हो सकती थी यह उसकी समझ में न आया। घर आते ही 10 रुपये खर्च करके उसने खाने पीने का सारा सामान मंगवाया। उसके बाद 10 दिन तक माँ ने बेटे को खूब खिलाया पिलाया। 10 दिन के भीतर ही धर्माराव के गाल कुछ उभरते दिख पड़े। गर्भाधान से एक दिन पहले धर्माराव बाजार गया। गांव के बूढ़े किसानों का धर्माराव पर बड़ा प्रेम था। शास्त्री जी का बेटा होने के नाते वह सब बड़े बूढ़ों का दुलारा बन गया था। उसे देखकर 90 वर्षीय बूढ़े आसामी ने कहा, जान पड़ता है पोता जी गर्भाधान के लिए तैयार हो रहे हैं। धर्माराव तनिक लजा गया। उन बड़े बूढ़ों का परिहास भी विचित्र होता था, कुछ असभ्य भी होता था। वह बूढ़ा आगे कहने लगा, आजकल के लोगों में शक्ति कहाँ, खा भी नहीं सकते पचा भी नहीं सकते। मैं बचपन में एक एक मन गुड़ चुरा कर अकेला खा जाता था। ज्वार का हुरड़ा, पाद टिप्पणी में, ज्वार के कच्चे भुट्टे आधे भुनकर तैयार किए हुए दाने जिन्हें लोग बड़े चाव से खाते हैं, दो दो तीन तीन सिर देखते देखते खा जाता था। और हल चलाने लगता तो सवेरे शुरू करके सांझ तक जुआ उतारने का नाम नहीं लेता था। गुंडेरू नदी के आर पार छलांग लगा सकता था। उसी समय कबीर उधर से गुजर रहा था। बूढ़ा उसे देखकर कहने लगा, उस कबीरे को देखो, बड़ा पहलवान है ना, जरा कहो कि मुझसे पंजा तो लड़ा कर देखे। यह कहकर बूढ़े ने अपना हाथ बढ़ाया। अब तक कई बार कबीर उस बूढ़े से पंजा लड़ा चुका था और दर्द से तिलमिला भी चुका था, अतएव कबीर दूर दूर से कतराने लगा। बूढ़ा बोला, देखो कैसा कतरा रहा है, 40 बरस का जवान है, मैं 90 बरस का खूसट हूँ, देख लिया। धर्माराव बोला, दादा तुम्हारी शक्ति हम में कहाँ से आएगी, जवार मकई रागी आदि का अन्न तुमने खाया है और हम चावल खा रहे हैं, सच पूछो तो हम तुम्हारी उम्र तक जीवित भी कहाँ रहेंगे। धर्माराव वहाँ से शेट्टी की दुकान पर गया और कपड़ा लत्ता सुपारी आदि सामान लेकर घर लौटा। सावित्री देवी खर्च करने में आगे पीछे न देखती थी। 10 दिन में उन्होंने सारा सामान खर्च कर डाला। धर्माराव ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी न्योता भेजा था, सब आने ही वाले थे, अतएव और सामान लाया गया। कुल मिलाकर 60 रुपये का सामान आया। अब हाथ में केवल 29 रुपये रह गए थे। 14 रुपये की एक अशर्फी खरीदी गई, अब बचे 15 रुपये। दूसरे दिन रंगापुर जाने का निश्चय हुआ। धर्माराव की बहनें जीजा और उनके लड़के उसी रात को आने वाले थे। रिश्ते नाते में ऐसा ही होता है, लड़ झगड़ कर सिर फोड़ लेते हैं, परंतु जरूरत पड़ने पर सब एक हो जाते हैं। सांझ हो आई, सूर्य जैसे देव का राग अस्त होते समय भी नहीं छूटा। पंछी लंबी लंबी श्रेणियां बनाकर नभ के अंतराल में उड़ रहे थे। आंगन में खड़े अश्वत्थ वृक्ष का अग्रभाग अस्तंगत सूर्य के आतप में अपना राग प्रकट करने लगा। देवदासी धर्माराव को देखने आई। उसे दूर से देखते ही धर्माराव दुपट्टा ओढ़कर बाहर आया। दोनों मंदिर की ओर चले। रास्ते में मंगा ने धर्माराव को देखा। देखते ही वह अपनी एक सहेली से कहने लगी, देखा मेरा लाल तो राजा है। धर्माराव जानता था कि मंगा उसकी ओर देख रही है, पर वह उससे कभी नहीं बोलती थी। दोनों भाई बहन शिव सानिध्य में पहुंचे। भाई भीतर गया, बहन मंडप में खड़ी रही। स्वामी ने धर्माराव के कंधे पर से देवदासी को देखा। फिर वे सोचने लगे, कृष्ण ही मुझसे अधिक भाग्यवान है। धर्माराव अर्धविरागी था, परंतु उसमें जितना विराग था उतनी ही लालसा भी थी। स्वामी के पास खड़ी पार्वती को देखकर वह सोचने लगा, इस गृहस्थी के फंदे से तो भगवान भी बच न सके, तब मेरी क्या गिनती। पुजारी रुद्रपाद लाने लगा तो थाली से कुछ आवाज आई। पाद टिप्पणी में, रुद्रपाद दक्षिण के शिव मंदिरों में प्रसाद के रूप में सिर पर टिकाया जाने वाला सोने चांदी आदि का बनाया हुआ शिवचरण होता है। तो थाली से कुछ आवाज आई। धर्माराव को लगा कि उसके विचार समझकर भगवान हंस पड़े हैं। इसके बाद भाई बहन वेणुगोपाल के दर्शन करने गए। जब तक देवदासी मंदिर में थी, स्वामी उसी की ओर एकटक देख रहे थे। धर्माराव सोच रहा था, स्वामी मेरी तरफ देखते ही नहीं। अंधियारा छा गया, दोनों घर लौटे। गिरिका को उसके घर छोड़कर धर्माराव लौटने लगा। गिरिका ने पुकारा, भैया। धर्माराव ने मुड़कर देखा। गिरिका बोली, कल गर्भाधान हो रहा है ना, भाभी आ जाएगी तो शायद तुम हमसे बोलोगे भी नहीं। धर्माराव बोला, तू पगली है। गिरिका ने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और उसे धर्माराव को देकर कहा, इसे मेरी तरफ से भाभी को दे देना।